الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى الحج أشهر معلومات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امید ہے انشاءاللہ آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہو اور آئندہ کل سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائیں. ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور قرآن کریم نے ان مہینوں کو اشہر الحرم کہا. اشہر الحرم قرآن میں چار مہینے ہیں، رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک ان مہینوں کے لیے خاص احکام تھے، اور وہ لوگ بھی ان مہینوں کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے. رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں کبھی بھی یہ لوگ جھگڑے، لڑائی، فساد وغیرہ نہیں کرتے تھے. اس مہینے کو حرمت والے، حرام یعنی اشہر الحرم، ایسے مہینے جس میں برائی کو ممنوع سمجھتے تھے. اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اس کے پہلے دس دن بہت ہی برکت والے، بہت ہی ثواب والے دین ہیں، اور اس دس دن میں ایک دین ہے یوم العرفہ، نائن ذوالحجہ، اور دس ذوالحجہ یہ قربانی کا دین ہے. कुर्बानी वैसे 3 दिन की होती है, 10, 11 और 12 जिलहिज्जा की, लेकिन पहले दिन की कुर्बानी दूसरे 2 दिनों से अफजल है। और इसी 10 जिलहिज्जा को कुरान ने हज्जुल अकबर कहा है, यौमुल हज्जुल अकबर। हज का सबसे बड़ा दिन वो 10वीं जिलहिज्जा है, इसलिए कि इसमें मुजदलिफा से हाजी लोग मीना आते हैं और मीना में आकर कंकरी मारते हैं। कंकरी मारकर ये लोग कुर्बानी को ज़बह करते हैं और कुर्बानी के बाद ये बाल कटवाते हैं और तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। 10 जिलहिज्जा को हज के बहुत ज़्यादा काम हैं बनिस्बत और 5 दिन 4 दिन के। इस एतबार से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये 10वीं जिलहिज्जा जो है ईद का दिन, कुर्बानी का दिन जो है, ये हज्जुल अकबर है। वैसे फेमस तो लोग ये कहते हैं कि अगर जुमा को अरफात का दिन हो तो वह हज्जे अकबर है, लेकिन ये सही नहीं है, हज्जे अकबरी उसको नहीं। हाँ, जुमा के एतबार से उसका दर्जा 70 दर्जा बढ़ जाता है, 70 हज के बराबर हो जाता है, लेकिन हज्जे अकबर को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कुरान में कहा है 10वें सिपारे में, वो 10 जिलहिज्जा को कहा है। यौमुल हज्जुल अकबर का लफ्ज कुरान में है, ये हज अकबर का दिन है, क्योंकि उस दिन में बहुत काम होते हैं। जुमा के दिन में अरफात हो तो सवाब बहुत ज्यादा है, सवाब के एतबार से कोई इनकार नहीं है, बल्कि वो हज का दर्जा बहुत बढ़ जाता है वो सवाब के एतबार से, लेकिन काम के एतबार से अगर देखा जाए तो वो 10 जिलहिज्जा का दिन है, जो उसमें काम ज्यादा है, और हज के काम जितने ज्यादा हो मशक्कत वाले इतना सवाब ज्यादा है। और ये सारे मशक्कत वाले काम है कि आदमी मुजदलिफा से आएगा, शैतान को कंकरी मारेगा, मार करके फिर मक्का मुकर्रमा जाकर ये फिर मनहर में जाएगा, कुर्बानी करेगा, जैसे आजकल करेंगे कुर्बानी होगी, और उसके बाद कुर्बानी के बाद ये फिर बाबर के पास जाके बाल कटवाएगा, उसके बाद फिर मक्का मुकर्रमा जाकर उसको तवाफ़ ज़ियारत करनी है, उसके बाद सही करनी है, जबकि पूरी रात का जागा हुआ है मुज़दलिफा में, पूरी रात जागा है, और अरफा के दिन पूरे दिन उसने इबादत की है, तो बहुत थका हुआ होता है, तो 10 जिला को और थक जाता है, इसलिए उसका सवाब बहुत ज्यादा है। इस एतबार से अल्लाह कुरान में इस दिन को यौमल हज्जिल अकबर कहते हैं, ये हज्ज अकबर का दिन है, इस दिन के अमाल बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबे में सहाबाए किराम के सामने फरमाया, और ये इसलिए कि हज के जो दीन है उसमें मैंने जुमा में भी कहा था, ये आदम अलैहिस्सलाम की तोबा का दीन है, अरफात का हज कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की तोबा को, और इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग को हज कहते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अरफात में कबूल हुई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। और आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपनी बीवी से कई सालों के बाद अरफात में हुई, अरफ यारिफू के माने पहचानना, इन दोनों की पहचान हुई अरफात में, चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका इंडिया में उतारा गया था, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के, या आज जद्दा जो है ना, वहां उतारा गया, इसीलिए उसको जद्दा के माना दादी, और हमारी दादी हजरत हव्वा है, इसलिए उसको जद्दा कहते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात अरफात में हुई, जैसा कि बाज़ी मुफस्सिरीन ने लिखा है। और इस अरफात के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, सुनो, मैंने तुमको पूरा मैसेज पहुंचा दिया 23 इयर्स का, अल्लाह की तबलीग का, अल्लाह की दावत का, अल्लाह की बातों का, हल बल्लग तू, मैंने पहुंचा दिया। सबने कहा हां, सबने इकरार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई, यह हदीस बुखारी शरीफ में, ऐसे उंगली उठाई आसमान की तरफ, शहादत की उंगली, और कहा अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह, इन तमाम ने हां कहा है, तू गवाह रहना,
कि मैंने सबको तेरा मैसेज पहुंचा दिया। इसीलिए अरफात में आयत उतरी ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इसीलिए यहूदी कहते हैं अगर हमारे मजहब में यह आयत उतरती तो उस दीन को हम ईद का दीन मनाते। तो हजरत उमर ने फरमाया हमारा भी तो ईद का दीन ही है। यह आयत उतरने के बाद दूसरा दिन ईद का दीन, हमने उसको ईद मनाई, हमारा दीन अल्लाह पाक ने मुकम्मल कर दिया। और किसी दीन के बारे में नहीं कहा, लेकिन इस्लाम के बारे में कहा है अल्लाह पाक ने। आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, एक काम तो यह हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर सबको गवाह करके बतलाया कि मैंने दावत और तबलीग का काम पहुंचा दिया, अब दीन में कोई कमी कोताही नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब पहुंच गया। कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि नबी ने ये नहीं बतलाया, नबी ने ये नहीं बतलाया, सब कुछ बतलाया। अगर वो उंगली उठाता है तो अल्लाह के ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान के ऊपर उंगली उठाता है वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि दीन मुकम्मल है, कोई कमी नहीं है। ये अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। तो ये बात आई है दीन, क्या दुनिया की बातें भी अल्लाह के नबी बतला के गए हैं, बहुत सारी ऐसी बात। दूसरी बात, अभी ज़िलहिज्जा के अंदर में पांच दिन है, पांच दिन है, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10, 11 और 12। चलो हम गिनते, अगर कल पहला दिन हो जुमा का तो जुमा को फर्स्ट ज़िलहिज्जा, शनिचर को सेकंड ज़िलहिज्जा, इतवार को थर्ड ज़िलहिज्जा, मंडे को फोर्थ ज़िलहिज्जा, ट्यूजडे को फिफ्थ ज़िलहिज्जा, ट्यूजडे को फिफ्थ ज़िलहिज्जा, वेनसडे को सिक्स ज़िलहिज्जा, वेनसडे को सिक्स, और नेक्स्ट थर्सडे को सेवन ज़िलहिज्जा, फ्राइडे को एट ज़िलहिज्जा। तो फ्राइडे फजर से मर्द और औरत दोनों के ऊपर वाजिब, अगर आज रात चांद हुआ तो, नहीं बात, अगर आज रात चांद हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे, कल की फ्राइडे नहीं, परसों की फ्राइडे नहीं, उसके बाद वाली फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को वो 8 ज़िलहिज्जा होता है, और वो है 8, 9, 10, 11 और 12। बात समझ आई है? ये हज के दिन होंगे। 8 को सब लोग कहां जाएंगे? हज में जाएंगे। 8 को कहां जाएंगे? हज में जाएंगे। अब उसके बाद सतरदे, सतरदे अरफा का दिन है, सतरदे। अगर ना, अगर मैंने कहा कि अगर आज चांद हुआ तो नेक्स्ट सतरदे, ये आने वाली सतरदे की बात की, सतरदे अरफा का दिन है, और संडे ईद का दिन है। तो 9 को जब हाजी, 8 को जब हज में जाएंगे, मीना जाएंगे, 9 को अरफात में जाएंगे। 9 को कहां जाएंगे? अरफात, यानी नेक्स्ट सतरदे वो अरफात में होंगे। तो सतरदे को फजर की नमाज से लेकर सतरदे, संडे, मंडे, ट्यूजडे और वेनसडे की असर तक 23 नमाज है, नमाज है 23 नमाज है। इनमें क्या करना है? हमें तकबीर तशरीक पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक है। इंशाल्लाह फिर भी याद दहानी करेंगे नेक्स्ट वेनसडे को, जिंदगी बाकी रही तो ये याद रखना है कि अगर आज चांद हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे को लोग हज में जाएंगे, सैटरडे को तकबीर तशरीक शुरू होगी, हर फर्ज नमाज के बाद वाजिब है मर्द पर भी औरत पर भी। अगर छुट जाए, याद आए, मुसल्ले पर अगर बाकी है तो पढ़नी चाहिए, रकात भी छुट जाए तो रकात पूरी करने के बाद उसको पढ़नी है, इतनी जोर से पढ़नी है कि खुद सुन सके, जोर से पढ़नी है ताकि खुद, मर्दों को जोर से पढ़नी है, औरतों को आहिस्ता पढ़नी है। आई बात समझ में? ये वाजिब है, वाजिब को छोड़ने पर गुनाह होता है, इसलिए तकबीर बेस्ट यही है कि अपने मुसल्ला जो हो औरतों को मुसल्ले के सामने दीवार पर ये तकबीर तशरीक को चिपका देना चाहिए कि तकबीर तशरीक पढ़नी है तो याद आ जाती है तो उसको क्या है पढ़ लिया जाए एक बार। ये क्या तकबीर तशरीक है क्या? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी चलानी शुरू की, छुरी चलानी शुरू की तो फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पढ़ रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम डुम्बा लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? जन्नत का शीप लेकर आ गए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरा सेंटेंस कहा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं अल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो गोया इस जुमले में तीन लोगों की दुआएं हैं। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम कितने नसीब वाले हैं इस उम्मत को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वजीफा मिला, जिब्रील अलैहिस्सलाम का वजीफा मिला और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वजीफा मिला। इतनी जबरदस्त कुर्बानी है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि असल तो बेटे को जबा करना है, असल तो अल्लाह ने कहा ना कुरान में कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबा करो, लिटा दिया बेटे को, बेटे को लिटा दिया और उनके पैर को उन्होंने बांधा तो बेटे ने कहा अब्बा जान मुझे उल्टा लिटा दो, उल्टा कहा आप मेरे चेहरे को, खूबसूरत चेहरा है इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और अजीब कुरान में देखो अल्लाह पाक ने कितनी उनकी तारीफ की है, कैसा ऐसा बेटा है, कहा मुझे उल्टा लिटा दो कहीं मेरा चेहरा देखकर तुम्हें रहम ना आ जाए और तुम अल्लाह का हुक्म पूरा ना करो, तुम अल्लाह का हुक्म पूरा ना कर सको और मेरे कपड़े को जरा समीट लेना, निकालना नहीं समीट लेना, उस जमाने में चादरें पहनती थी, समीट लेना बराबर उसको, मुझे उसको लपेट दो कि ताकि खून निकले तो मेरे कपड़े पर न गिरे वरना मेरी अम्मी देखेगी तो थोड़ी परेशान होगी जी। और बांस कहते हैं कि वो छुरी जब चलाना शुरू की छुरी चलती नहीं और वो और कर रहे हैं जैसे फिर शाप करके फिर कर रहे हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में कह रहे हैं छुरी चलती क्यों नहीं, हर जगह चलती यहां नहीं। फरमाया तुम्हारा काम चलाना है, अल्लाह मुझे मना कर रहा है नहीं चलना है, अल्लाह ने मना किया। वो जैसे ही अल्लाह ऊपर कह रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम डुम्बा लेकर आ गए कहा उनको छोड़ो ये। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, दोनों झुक गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और बेटा भी। आजकल की औलाद होगी तो पुलिस को फोन करो मुझे कत्ल करने की बात कर रहा है। क्या थे अल्लाह अकबर क्या थे वो बेटा भी कैसा। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैं तुम्हें ऐसा बेटा दूंगा इब्राहिम जो बर्दाश्त करने वाला सबरदार। अल्लाह ने बेटा बशारत भी दी और बेटा दिया, और बेटा भी दिया 100 साल की उम्र में। उनकी बीवी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी की उम्र 90 ईयर्स की है और उनकी उम्र 100 साल की, तब बेटा मिला। वो तो वो कुरान में पूरा वाक्य है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में थे बैठे हुए और अचानक आ गए दो या तीन बड़े नौजवान खूबसूरत, 24 पारे में है बहुत खूबसूरत। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारी तरह तो नहीं था कि दरवाजा बंद रहता था, उस जमाने में छोटा सा मकान था, वो आ गए अंदर वेलकम किया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सब कुछ, तशरीफ रखे तशरीफ रखे बैठो बैठो बैठो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारी तरह पूछे चाय पियोगे के नहीं पियोगे, पियोगे के नहीं पियोगे, नहीं भी कह दिया और नहीं पीना है, खाना खाओगे के नहीं खाओगे ऐसा नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। अंदर चले गए, उनके पास बछड़ा था, बछड़े को जबा करके उसको भून दिया और भूना हुआ बछड़ा लाकर सामने रख दिया। पूछा उछल नहीं है, मेहमान आए हैं ना, तीन नौजवान आए हैं। अब यहां यह पता चलता है कि नबी को गैब का इलम नहीं होता है, याद रखो नबी को गैब का इलम, वरना उनको पता इब्राहिम और खलीलुल्लाह है, उनको पता होता कि ये कौन है, लेकिन वो तो नौजवान शक्ल में आए हुए थे बैठे। ये तो मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि बछड़ा जबा किया उसको भूना सामने लाकर रख दिया। तो पहले जमाने में ऐसा होता था वो नमक खाते थे ना, किसी के घर का नमक खाते थे तो पूरी जिंदगी वो मोहब्बत करते थे, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाते। आज की तरह नहीं कि हजारों साल नमक खा के भी पांच छह साल तक घर में खाता रहा फिर भी आखिर में डंडा मार के गया। आज ऐसा है, नमक खाता रहा फिर भी मार के गया। उस जमाने में कोई नमक खाता था तो कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि ये हाथ क्यों नहीं डालते, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए आए हैं कोई। अगर खाना खाए तो मोहब्बत होती है ना, खाते क्यों नहीं? तो पूछा भाई खाते क्यों नहीं तुम? तो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो है फरिश्ते जिब्राइल मीकाईल और इसराफील, खूबसूरत शक्ल में आए थे, हम तो है फरिश्ते और फरिश्ते खाना नहीं खाते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये तो फरिश्ते हैं। अच्छा कैसे आना हुआ? कहा हम तो आए हैं आपको बेटे की बशारत देने के लिए और लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए। दो बार बयान की कुरान ने वहां पर 14वीं पारा दो काम के लिए आए हैं। अब खूबसूरत क्यों? ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम खूबसूरत बच्चों को देखकर दौड़ती थी उनकी तरफ, मैन टू मैन जो आज है ना, दौड़ती थी। तो ये बहुत खूब जिब्रील अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, फरिश्तों की खूबसूरती, वो तो नूर से बने हैं, नार से तो आग से तो नहीं बने, मट्टी से तो नहीं बने, नूर से बने वो तो। और फिर इनको बशारत दे दी, जो भी कुछ बात थी कि मुझे बच्चा कैसे होगा, मैं बूढ़ी हूं, वो कहते हैं मैं मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, फरमाया नहीं, अल्लाह ने कहा होगा होगा, ये बच्चा हुआ इस्माइल। फिर आगे वहां गए तो घर में गए लूत अलैहिस्सलाम की, उनको भी पता नहीं कि ये, वो भी समझे मेहमान है। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तो कौम के साथ थी, लूत अलैहिस्सलाम से नफरत करती थी, जाकर कौम वाले से कहा अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं खूबसूरत, आओ आओ घर में, जाकर बता दिया सबको। वो सारी कौम टूट पड़ी, मर्द लोग बुराई करने के लिए। तो लूत अलैहिस्सलाम कभी इस दरवाजे पर कबूल नहीं, यार मेरे मेहमान की प्लीज मुझे इकराम करने दो, तुम ऐसा काम ना करो, हमारी बेटियां उनसे शादी कर लो, ये काम ना करो, हमारे मेहमान है ये, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन वो मानते नहीं, ऊपर चढ़ गए नीच। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्तों ने कहा घबराओ नहीं, हम नौजवान नहीं है, हम तो फरिश्ते हैं, आने दो उनको। वो जैसे ही ऊपर से नीचे कूदे ना, वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर खोला और एक मारा, सारे मर गए। ये पूरा वाक्य कुरान में है। तो वहां से मैं बता रहा हूं कि 100 साल की उम्र में तो बच्चा मिला और उस बच्चे को भी मक्का में रखा, मुकर्रमा में माई के साथ वहां रखा, छोटा बच्चा, वो वहां ही बड़ा हुआ, शाम में बड़ा नहीं हुआ, वो मक्का मुकर्रमा और वही शादी हुई उनकी और वहीं पर बड़े हुए और उन्हीं के पैर के नीचे जमजम निकला है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ मारा तो जमजम निकला और वही जो ग्रीन लाइन थी हजरत हाजरा की दौर आज तक बाकी है, ये कुर्बानी है ना सब। और वही इस्माइल है जिनको जबा करने के लिए ले जा रहे हैं, तो रास्ते में शैतान 3 मरतबा आया, पहली बार बीवी के पास, फिर बच्चे के पास, फिर इब्राहिम के पास। अल्लाह ने उस याद को आज तक बाकी रखी है, 5000 साल हो गए कि 3 जगह पत्थर मारो, छोटे वाले बड़े वाला, इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उनकी माँ और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 3 जगह बड़े वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त आया था, तीनों जगह पत्थर मारो, वो आज तक बाकी है। चूंकि जबा करने के लिए तो मीना की तरफ ले गए थे, वो जगह आज तक मौजूद है और वहीं पर जिब्राइल आए जुम्मा लेकर, और मैं कद सद्दकत रुया, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था, तुम पास हो गए, तुम्हारा इम्तिहान लेना था, तुम पास हो गए बस। और अब क्या हुआ? अब तुम्हें बकरे को जबा करना है, तो हम भी कुर्बानी करेंगे। तो अगरचे बेटे की कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरस पर चलते अपने दिल से कुर्बानी करते हैं। कैसी भाई? दिल से। बात मेरी समझ में आ रही है? पैसे वाली खेचे टान वाली नहीं, वहां 110 है, वहां 120, 110 वाली 10 पाउंड मेरे बच जाएंगे, नहीं। कुरान करीम को उठा कर देखो, तफसीर को उठा कर देखो, वहां कुरान करीम में लैयना अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह कह रहे हैं कुर्बानी तुम करना, उसका गोश्त तुम खाना और उसके जितनी चीजें तुम खा लेना, चमड़ी तुम बेच देना उसकी और उसके हड्डियां तुम चूसना, उसके खुर तुम, जो भी हो पैर वगैरह उसको तुम खाना, दिमाग तुम खाना, मैं तो तुम्हारा वला की यनालू तकवा मिनकुम, मैं तुम्हारे दिल के अंदर की खुशी देखना चाहता हूं कि तुम किस खुशी के साथ मेरे रास्ते में कुर्बानी करते हो। इस आयत के तहत में मुफस्सिर फरमाते हैं कुर्बानी में दो चीज जरूरी है, कुर्बानी में दो चीज जरूरी है, एक है इखलास तकवा अल्लाह के लिए हो। शोशा के लिए या तो लाख का बकरा मैंने खरीद लिया हुआ हिंदुस्तान में, एक मिलियन का खरीद लिया है तो बहुत लोगों के ऊपर क्या क्या तरजीह देते हैं, मैंने इतने का किया, मैंने इतने का नहीं, इखलास के साथ। नंबर दो जहायाकुम फइन्नहु अला सिराति मतायाकुम, मोटी कुर्बानी करो ताकि तुम उस पर बैठो कयामत के दिन और वो कुर्बानी तुम्हें जन्नत में ले जाए। बोल सिरात के ऊपर से भाई, वो डुबली पटली 100 पाउंड वाली नहीं कि धक्का मारो गिर के मर जाए, 50 पाउंड ज्यादा जाएंगे लेकिन उसमें नफा मेरा है, ये 50 पाउंड तो खत्म हो जाएंगे लेकिन क्या होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात तुम जब जाओगे पुल सिरात पर तो ये सवारी बन जाएगी, तुम ऊपर बैठ जाना, ये पुल सिरात से तुम्हें गुजार के ले जाएगी। अब सवाल तुम्हारे जहन में आया होगा, मेरी माए और बहनें शायद नबी आया हो लेकिन मेरे जहन में तो आया कि मैं तो हर साल बेहतर से बेहतर कुर्बानी करता हूं, 150 पाउंड वाली, 160, 170, 180, 200 पाउंड वाली, और कोई बहुत सारे माशाल्लाह हमारे दो तीन दोस्त ने बताया उन्होंने तो ऊंट की कुर्बानी की है, 1000 पाउंड भेजे उन्होंने यहां से फलस्तीन, 1000 पाउंड ऊंट की कुर्बानी देने वाले देते कुर्बानी, चूंकि इसमें किसी का फायदा नहीं, बेचारे गरीबों के गोश्त का फायदा है लेकिन अपना फायदा भी है कि मैं कयामत में ऊंट पर बैठकर पुल सिरात पर चलूंगा। हरेक अल्लाह के नबी कह रहे, मैं ही कह रहा हूं, सब मिनू सहाया को मोटी कुर्बानी करो, छोटी छोटी वाली सस्ती वाली नहीं, दिल की खुशी के साथ करो। क्यों? ये तुम्हारे लिए पुल सिरात के ऊपर सवारी होगी। लेकिन सवाल जहन में ये है, मैं तो हर साल करता हूं तो कोई भी एक सवारी होगी ये तो हर साल कितनी कुर्बानी हो जाएगी। अगर आप 40 साल से कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी तो 40 कुर्बानी होगी, तो 40 कैसे होगी? फरमाया हां, तेरी कब्र से लेकर जन्नत तक पहुंचने के लिए हर थोड़ी थोड़ी मंजिल पर एक एक सवारी लाई जाएगी। तुमने पहले साल जो कि वो पहले होगी, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर सबसे आला, फिर तुम जन्नत में चले जाओगे, हर सवारी पर तुम बैठोगे और जन्नत में जाएगी। वो मेरी बात समझ में आ रही है ना? या फिर एक बड़ी सवारी उन तमाम जबटले में लाई जाएगी, या बास उलमा फरमाते हैं कि वो सवारी तुम्हारी बहुत मोटी थी तो अल्लाह पाक उस कुर्बानी की वजह से पुल सिराब के ऊपर चलना तुम्हारा बिल्कुल आसान कर देंगे, एकदम इजी, और बिजली की तरह गुजर गया। इसलिए मेरी माए और बहने, जिन पर जकात वाजिब है, जिन पर सदकतुल फितर वाजिब है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। शोहर के भरोसे ना बैठो कि वो करेगा, अपनी कुर्बानी खुद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा जाओ तुम्हारी कुर्बानी करो, कुर्बानी के पास खड़े रहो, अगर तुम ज़बह कर सकती है तो करो, नहीं तो वहां खड़ी रहो, या फिर उस दिन तुम कहीं कुर्बानी तुमने भेज दी है तो उस दिन अपनी कुर्बानी का तसव्वुर करो। हम तो यहां से भेजते हैं ना गरीबों को, तो अपनी कुर्बानी के पास वो जैसा ज़बह होगा, खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, उससे पहले अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से कहा तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नसई शरीफ की हदीस है, कयामत के दिन, कयामत के दिन तराजू तोला जाएगा, वो कुर्बानियां जो हमने की है उसकी चमड़ी, उसकी हड्डी, उसका हॉर्न्स, उसके खुर, उसकी डुम, उसकी जो है, और उसका खून और उसका पाखाना और उसका पेशाब, जितना भी किया उसने हमारी मौजूदगी में, यानी हमारे पास, हमने जानवर खरीद लिया, आजकल तो क्या भाई ऑर्डर करके भाई हमारी कुर्बानी कर देना, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में उस जमाने में एक एक दो दो महीना पहले कुर्बानी का जानवर खरीदते थे, उसको खिलाते पिलाते दौराते और मोटी करते। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कुर्बानी के दिन रो रहे हैं, کیونکہ دل پر چوٹ لگ رہی ہے کہ یہ میرا جانور ہے اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں آج, اتنی خدمت کی ہے میں نے, تو جانور سے محبت ہو جاتی ہے نا, اس جانور سے, اس بکرے سے, اس گائے سے, اس بھینس سے محبت ہو جاتی ہے, تو اس پر چھڑی چلے گی تو آنکھوں سے آنسو تو نکلے گا نا کہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا یہ جانور, اس کو میں اس طرح ہاتھ پھراتا تھا, نہلاتا تھا, چونکہ اب مجھے اس پر بیٹھنا ہے قیامت کے لیے, ہم نے قربانی سمجھی کیا ہے, بس آرڈر کر دیا قدر ہو گیا, ہم سمجھتے نہیں ہے قربانی کیا ہے, قرآن میں کیوں اس کا ذکر ہے, حدیث میں کیوں اس کا ذکر ہے, بات سمجھ رہی ہے نا, تو اس کا پیشاب دو مہینے تک تمہارے پاس رہے, اس کا پیشاب, میں نہیں کہہ رہا ہوں نسیح شریف اٹھا کے دیکھو, اس کا پاکھانا سب کچھ تولا جائے گا اور اس کے برابر ثواب دیا جائے گا, پاکھانا بھی تولا جائے گا جانور کا, واللہ کہہ رہا ہوں جوتنی صحیح ہے, اور اس کا پیشاب بھی تولا جائے گا, ہم نے قربانی سمجھی کیا, اس کا بہت بڑا ثواب ہے, اس لیے جس پر زکات واجب, جس پر زکات واجب, جس پر صدقۃ الفطر واجب, اس پر قربانی واجب, لیکن زکات کے مسئلے میں کیا ہے, سال گزارنا ہے, سال گزارنا ہے, لیکن قربانی میں سال گزارنا نہیں ہے, آپ کے پاس اس دن میں, ان دنوں میں اتنے پیسے ہیں جس پر زکات واجب ہو جاتی ہے, چاندی کے حساب سے, مول نہیں, چاندی کے حساب سے اتنے پیسے ہیں 400-500 پاؤں, تو پھر کیا اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے, یاد رکھنا, اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کریں تو وہ میری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, نہ آئے, ضرورت نہیں ہے, بات سمجھ آ رہی, تو یہ میں بات بہت آگے نکل گیا, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں, اچھا میں کہہ رہا تھا کہ وہ حج کے دین ہے اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا کہ قربانی کی تو ہمیں قربانی پر بیٹے کا ثواب ملے گا ذبح کرنے کا, ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا, کس بھائی ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب قربانی کا ملے گا, اس لیے اپنی قربانی کو بہتر سے بہتر ہو اور اس کو ذبح کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وہ لوگ سوال کرتے نا ارے اتنی جان لیتے اس سے بہتر صدقہ دے دو, عید کے جو تین دین ہیں 10-11-12 اس میں قربانی واجب ہے, قربانی فرض ہے, اگر قربانی جگہ کی جگہ آپ نے کسی مالدار کو اتنے پیسے, کسی غریب کو اتنے پیسے دے دیے یتیم کو, تو آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا, اس میں قربانی ہی قربانی کرنی ہے, اور بلکہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک قربانی ہے وہ ہے 200 پاؤنڈ کی اور آپ کو کسی نے 210 پاؤنڈ دیے, تو 200 پاؤنڈ کی قربانی آگے 10 پاؤنڈ بچ گئی آپ کے پاس, وہ جانور 200 کا تھا اور کسی نے 210 دیے ہیں, تو وہ 10 پاؤنڈ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے, اس 10 کو بھی صدقہ کر دو, مکمل قربانی, بات میری سمجھ آ رہی ہے نا, یہ چیز, اس لیے قربانی کے بارے میں بہت بڑے مسائل ہیں, بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے سالوں, بہت سارے یوں کرتے ہیں پورے گھر کی ایک قربانی ایک بکرا کر لیتے ہیں, پورے گھر کا ایک بکرا, نہیں, جس کے پاس اگر ہماری اولاد بالغ ہے اور ان کے بینک بیلنس میں 500 پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے, ان کا بھی شے لگاؤ, یا تو بڑا جانور ہو جس میں 7 کا شے آ جائے, یا ایک ایک کرو بکرا ایک ایک کا اس طرح, لیکن قربانی جس کے پاس جو صاحب نصاب ہو اس پر واجب ہے, نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بہت بڑا گناہ ہوگا, اور کل سے کی میں بات کر رہا تھا اصل 10 دن کے بارے میں کہ ولیالن عشر, قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی بڑی تعریف کی ہے, 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ پاک نے, اگر آج چاند ہو گیا تو آج کی رات سے 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی, عبداللہ ابن عباس فرماتے جن کی باتیں قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے اور وہ امام المفسرین ہیں, اور بخاری شریف والے امام بخاری عبداللہ ابن عباس کے قول کو نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس ولیالن عشر سے مراد یہ 10 رات اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے, آج رات سے 10 رات تک اگر چاند نظر آئے 10 رات اتنی قیمتی ہے کہ اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے, ان راتوں کی قسم کھائی ہے, اور اتنی فضیلت کیوں ہے اس کے بارے میں इस्लाम की सारी इबादतें इन दिनों में अदा हो सकती है। इन दिनों में हज भी है, कुर्बानी भी है, रोजा भी है, लोग उम्रा भी करते हैं, हर नेकी करना चाहे। रमजान में कोई हज नहीं कर सकता, रमजान में कोई हज नहीं कर सकता है और रमजान में कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। इसमें कुर्बानी भी है, तकबीर तशरीक भी है, इसलिए ये दिन बहुत बड़े हैं, इसमें सब कुछ है, आदमी हर चीज कर सकता है जी। तो आदमी इसमें रोजे भी रख सकता है, इसमें कुर्बानी भी करता है, उमरा भी कर सकता है, हज भी करता है और तकबीर तशरीक भी करता है, अरफा भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसकी एक हर रात लैलतुल कदर के बराबर है, ये 10 रात जो है ना, हर रात लैलतुल कदर के बराबर है और एक दिन का रोजा है 1 साल के रोजे के बराबर तिर्मिज़ी शरीफ में। ये एक दिन का रोजा 1 साल के, और अरफा के दिन का रोजा रखें तो 1 साल पिछले, 1 साल अगले, 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और अरफा के दिन दुआएं कबूल होती है। और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज की कसम खाई, अरफा की कसम खाई, अल्लाह पाक ने कुर्बानी की रात की कसम खाई है, 10 दिनों की कसम खाई है। तो ये बहुत अजीम शान दीन है और इन दिनों के अंदर में सबसे ज्यादा अगर अहम इबादत है तो वो तीसरा कलमा है। कौन सा कलमा है भाई? तीसरा कलमा, कसरत से पढ़ना है, सुभान अल्लाह والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی 100 بار پڑھ لے یہ پورا کلمہ تو اس کو 100 اونٹ کی قربانیوں کا ثواب حدیث میں ہے، اس کو 100 گھوڑوں کو سامان کے ساتھ अल्लाह के रास्ते में देने का सवाब मिलेगा, 100 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा और उससे ज्यादा नेकी कोई, उससे ज्यादा नेकी कोई करने वाला नहीं है अगर 100 बार पढ़ा। हां अगर कोई 100 से ज्यादा पढ़ ले उसकी नेकी ज्यादा हो जाए। तो इन दिनों के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम तीसरे कलमे 5 नमाज की पाबंदी करें, 5 नमाज की पाबंदी करें। नंबर 1, गोया हम इस अशरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, 5 नमाज की पाबंदी करें और खूब तोबा और इस्तगफार करें। उसमें सबसे पहला काम सलात और तोबा पढ़े, रोजाना सलात और तोबा पढ़े और अल्लाह से इन अय्याम के आमाल सालेहा की कबूलियत का, इसलिए हदीस में कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे इन दिनों में आमाल सालेहा अल्लाह को इतने महबूब है कि पूरे साल में इतने महबूब नहीं। तो अल्लाह से सलाम तौबा करें और अल्लाह से कहे अल्लाह मेरे इन दिनों के आमाल सालेहा को तू कबूल कर ले, सबसे बड़ी बात। और हर नमाज के बाद इस्तिगफार करें, क्या करें भाई? इस्तिगफार करें, इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वातूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्ब वातूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वातूबु इलैह। इस तरीके से जितने भी इस्तिगफार हो सकते हैं कम से कम 300 टाइम और ज्यादा से ज्यादा 500 बार रोजाना करें। ये कसरत की निशानी है, 300 से लेकर 500 तक। अगर पूरा नहीं पढ़ सकता तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह 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 हर नमाज के बाद 100 बार जरूर पढ़ ले। आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, वल्लाह ही कह रहा हूं मैं, हदीस और कुरान के सामने रखकर मैं कह रहा हूं कि आप दिमाग में सोच करके आप सिर्फ 500 बार 10 दिन पढ़ो आपका वो काम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह हजारों वाक्यात है, ये तो खुद अल्लाह कुरान में कह रहा है इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, माफ भी कर देगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रार व युमदिदकुम। तो इन दिनों में हमें इस्तगफार करना है, सलात तौबा पढ़ ले रोजाना 2 रकात की, चाहे ईशा के बाद पढ़े मगरिब के बाद पढ़ ले, तौबा की नीयत से अल्लाह जिंदगी भर जितने गुनाह किए तो मुझे माफ कर ले, اور نمبر دو پر سجدے شکر کرے یا صلات و شکر پڑے دو رکا اور اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ مہینہ عطا فرمایا، اب اس مہینے میں جتنے میں نیک اعمال کروں اللہ تو اسے قبول فرما جی. اور تیسری چیز، ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں ڈیڑھ منٹ لگے گی آپ کو، ڈیڑھ منٹ سے دو منٹ، دو منٹ کیا ہے، 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں 100 بار، 5 نماز کے بعد آپ دیکھو گے 500 بار ہو جائے گا. ان 10 دن میں آپ 500 بار کریں گے تو کتنی بار استغفر اللہ آپ نے کر لیا ہے. اور ان دنوں میں سب سے بڑی تسبیح جس کا ذکر آتا ہے کبھی بھولنا نہیں 5 نماز کے بعد، اور وہ کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے. جو اس کو کرے گا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان دینوں میں اس کی ان اعمال کو، ان دعا کو، ان تسبیحات کو اللہ قبول کر لے گا، اور اس کے ایک ایک دین کی تسبیحات پر اس کو کتنا ثواب ملے گا جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے بتایا رات کی عبادت میں ضرور کرے. چلو یہ چھوٹی چھوٹی رات ہے نا، 10 راتیں بہت چھوٹی ہے، عشاء 11 بجے ہوتی ہے اور فجر 4 بجے ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک کام تم کر سکتے ہیں نا، ضرور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں، مغرب کے بعد اوابین پڑھ لو. مغرب چونکہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے مغرب سے، ختم ہوتی ہے فجر صبح ساری پر، تو اس میں دو کام آپ کو کرنے ہیں. ایک کام مغرب کے بعد اوابین پڑھ لو. اوابین کے بارے میں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 سنت پڑھ لو، 2 نفل پڑھ لو، پھر 2 نفل پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، اگر بہت اور زیادہ کر سکتے 2 اور ملا لو. چلو 2 اور ملا لو، آپ کو روزانہ پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. کتنی رکعت ہوگی؟ 2 سنت، 2 نفل، پھر 2 نفل، اور اگر ملانا 2 اور ملا لو، ملانا ہے تو، ورنہ جمہور علماء کے یہاں یہ 6 رکعت ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں 2 سنت کے علاوہ 6 رکعت، چاہے یہ گنو چاہے یہ گنو، اس کو پڑھنے سے آپ کو 12 سال روزانہ عبادت کا ثواب ہے صحیح شریف میں. اور عشاء کے بعد تہجد کے لیے اتنا بڑا مشکل ہے تو پھر چونکہ چھوٹی رات ہے، بدن کے تھکنے کا بھی تقاضا فلا اور فلا، کم نیند کا بھی، رات بھی بہت چھوٹی ہے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو اور 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، 2 2 کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لو، پھر اخیر میں 3 وتر پڑھ کے سو جاؤ. قیامت کے دن آپ کو تہجد گزاروں میں سے اٹھایا جائے گا، اور یہ راتیں ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل جائے گا. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ دین تو بڑا آسان ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، اس میں صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر لے، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لے، تو 2 ہی رکعت میں سب کچھ مل بھی جاتا ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس لیے ان دنوں میں ان دنوں کی ضرور قدر کرے. اللہ پاک نے 2 بار ہمیں یہ دین دیے ہیں، کیا معلوم آئندہ ملیں گے کہ نہیں. تو ان راتوں میں ایک تو یہ ہے کہ خوب عبادت کرے، نمبر 2 گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور نمبر 3 آج کا آخری دین ہے، اگر بال کو شیو کرنا ہے، بال کٹوانا ہے، یا ناخون اگر کاٹنا ہے تو کاٹ لیا جائے، اگر ہو سکتا ہے رات میں چاند ہو گیا تو پھر یہ کیوں، اس لیے کہ حاجی لوگوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی کہ حاجی لوگ نہیں کاٹتے ہیں تو ہم بھی نہیں کاٹتے جب تک ہماری قربانی ہو جائیں، تو پھر اس مشابہت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ دنیا والے بھی کیا ہے، اپنے ناخون اور بال کو نہ کاٹے تو بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ بہتر ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. تو یہ کچھ کام کی باتیں جو تھی میں نے بتلا دی ہے، ان 10 دنوں میں بہت ضروری ہے. اٹ ول بی ٹو لیٹ نیکسٹ وینسڈے، اس لیے میں نے اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ وینسڈے کو کچھ قربانی، کچھ حج کی بات کریں گے انشاءاللہ، کچھ مسائل بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، يا ديان يا سلطان اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الأنية وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللهم سب پر رحم فرما اللهم پر کرم فرما اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے تکبر سے حسد سے بغض سے غرور سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما غیبت سے برائیوں سے دشمنی سے اور حیطرت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں نیک بنا ایک بنا آپس میں محبت مودت نصیب فرما اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما چاہے وہ انسانی دشمن ہو چاہے وہ شیطانی دشمن ہو چاہے وہ نفسانی دشمن ہو اللہ ان تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما ان تمام کے شور اور فتن سے ہماری حفاظت ان تمام کی زبانی شرور سے اور ان کی عملی شرور سے ہماری حفاظت فرما ہمارے دین میں رکاوٹ بننے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما یا اللہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے الہ العالمین امام نووی رحمت اللہ علیہ کے درس کو ہم سنتے ہیں بہت سالوں سے سنتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے مالا مال فرما اے اللہ نور سے منور فرما نور سے منور فرما اے اللہ اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں حضرت کی کتاب کی برکت سے اے اللہ جتنی حدیثیں ہم سن رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اے الہ العالمین حضرت کو اللہ امام نووی کو تو اے اللہ جو تم نے علم دیا ہے اس علم میں الہ العالمین اے اللہ ہمیں بھی ایسا علم نصیب فرما ایسا نور نصیب فرما ایسا نور نصیب فرما اے الہ العالمین ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرما الہ العالمین ہمارے اولیاء اور صالحین کی قبروں کو نور سے منور فرما ہمارے باپ اور اساتذہ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت کی مغفرت فرما جن جن لوگوں نے قربانی کی ہے کروا رہے ہیں اے اللہ سب کی قربانی کو قبول فرما سب کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ اچھی اور بہترین قربانی تیری خوشی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن قربانی ہمارے لیے قیامت کے دن چھٹکارے کا سبب بنے گا اے اللہ ہمیں دل کھول کر اور خوب زیادہ اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنے ماں باپ مرحومین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نیکوں کے لیے قربانی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اللہ العالمین یا اللہ جہاں جہاں قربانی ہوگی سب کو قبول فرما اے اللہ اس کا خون کا پہلا قطرہ گرے اس سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دینا یا اللہ ہمارے دین کو قبول فرما یا اللہ پوری زندگی دین پر قائم دائم فرما آئندہ جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ تو استقامت دین نصیب کر دینا اے اللہ پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما مشکلوں سے ہماری حفاظت فرما بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں ہندوستان میں جو مصیبت جو ڈیزاسٹر آیا ہوا اے اللہ کیوں ہوا ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے اے اللہ بھوکے ہو گئے اے اللہ کپڑے بغیر ہو گئے اے اللہ ان سب کی تو مدد فرما اے اللہ غیب سے مسرت فرما اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں سوائے تیری ذات کے اے اللہ تو ہی ہے تو مسلمانوں کی مسرت فرما مدد فرما یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا عافیت کا ذریعہ بنا مغفرت کا ذریعہ بنا اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ہماری دعا کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم.